लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, रूस और फिलीपींस के दो पत्रकारों को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलीपींस की पत्रकार मरिया रेसा हैं, जो ऑनलाइन समाचार संगठन रैपलर की सह संस्थापिका और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। पुरस्कार पाने वाले रूस के पत्रकार दमित्री मुरातोव हैं, जो नवाया गजेटा अखबार के मुख्य संपादक और सह संस्थापक हैं। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने इन दोनों पत्रकारों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई संदेश में कहा, ये पुरस्कार इस सच्चाई को मान्यता देता है कि एक स्वतंत्र प्रेस शांति, न्याय, टिकाऊ विकास और मानव अधिकारों के लिए अनिवार्य है। स्वतंत्र व निष्पक्ष संस्थान निर्माण की एक बुनियाद भी है। कोई भी समाज ऐसे पत्रकारों के बिना स्वतंत्र और न्यायसंगत नहीं हो सकता जो व्यवस्थाओं की गलतियों की जांच पड़ताल कर सके, नागरिकों तक सही जानकारी व सूचनाएं पहुंचाए, सार्वजनिक हस्तियों को जवाबदेह ठहराए और सत्ता के सामने सत्य बोलें। उन्होंने कहा, आइए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हम अपना संकल्प एक बार फिर मजबूत करें, पत्रकारों की बुनियादी भूमिका को पहचान दें और एक मुक्त, स्वतंत्र और विविधतापूर्ण मीडिया को समर्थन देने के लिए हर स्तर पर अपने प्रयास फिर से मजबूत करें। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज शहर की एक शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले की कठोरतम शब्दों में निंदा की है। खबरों के अनुसार जुमे की नमाज के दौरान हुए इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देश में संकटपूर्ण हालात के बीच यूएन एजेंसियों और उसके साझेदार संगठनों ने जरूरतमंद लोगों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए प्रयास तेज किए हैं। कुछ और जानकारी के साथ महबूब खान।
यूएन महासचिव ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि देश में एक सप्ताह से भी कम समय में धार्मिक केंद्रों पर ये तीसरा हमला है। उन्होंने आगाह किया कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म पालन के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जाना बुनियादी मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। उधर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और वैश्विक कोष ने विकट हालात का सामना कर रहे अफगान लोगों के लिए अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए $1.5 करोड़ की अंतरिम धनराशि मुहैया कराई जाएगी। इसके जरिए अफगानिस्तान की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने और उन लाखों निर्बल अफगान नागरिकों की रक्षा के प्रयास किए जाएंगे जिनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच से बाहर होने का जोखिम मंडरा रहा है। इस बीच यूएन एजेंसियां मानवीय राहत प्रयासों में वित्तीय कठिनाइयों, आवाजाही संबंधी चुनौतियों और जटिल भू राजनीतिक हालात पर पार पाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। लाखों लोगों के लिए भोजन, कंबल, स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 महामारी से पूरी तरह उबरने के लिए $8 अरब लागत वाली एक रणनीति पेश की है, जिसका लक्ष्य कोरोना वायरस टीके सर्वजन के लिए हर स्थान पर सुलभ बनाना है। वैश्विक कोविड 19 टीकाकरण रणनीति की मदद से सभी देशों में इस वर्ष के अंत तक 40% लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 के मध्य तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 70% तक ले जाने की योजना है। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। अब तक विश्व भर में कोविड 19 संक्रमण के 23,72,00,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और 48,00,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशों से एकजुटता का आह्वान किया।
एंड विदाउट अ कोऑर्डिनेटेड इक्विटेबल अप्रोच रिडक्शन ऑफ केसेस इन एनी वन कंट्री विल नॉट बी सस्टेन्ड ओवर टाइम।
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि समन्वित न्यायोचित प्रयासों के बिना किसी एक देश में कोविड 19 के मामलों में गिरावट को लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जा सकेगा। गुरुवार को पेश नई रणनीति के तहत 11 अरब टीके उपलब्ध कराए जाने होंगे। दुनिया में फिलहाल हर महीने लगभग 1.5 अरब टीकों का उत्पादन हो रहा है। मौजूदा लक्ष्य हासिल करने के लिए टीकों की पर्याप्त आपूर्ति है, मगर उन्हें न्यायसंगत ढंग से वितरित किए जाने पर बल दिया गया है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण और उसके कारण होने वाले मौतों की संख्या में हर दिन कमी हो रही है। पिछले सप्ताह संक्रमण के कुल नए मामलों की संख्या 31,00,000 दर्ज की गई, जबकि मृतक संख्या लगभग 54,000 थी।
श्रोताओ, मलेरिया वैसे तो एक ऐसी बीमारी है जिसे होने से पहले ही रोका जा सकता है और ये बीमारी होने के बाद भी इसका इलाज संभव है, मगर फिर भी हर वर्ष दुनिया भर में मलेरिया के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार दुनिया भर की लगभग आधी आबादी मलेरिया की जोखिम का सामना कर रही है। मलेरिया बीमारी फैलने और इससे मौत होने के ज्यादातर मामले सब सहारा अफ्रीका में होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की रोकथाम वाली पहली वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की सिफारिश की है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने इस वैक्सीन की इजाद को घातक बीमारी मलेरिया के खिलाफ दशकों से चले आ रहे संघर्ष में एक ऐतिहासिक उपलब्धि कहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रतिष्ठा जैन।
मलेरिया की रोकथाम वाली इस वैक्सीन को फिलहाल सब सहारा अफ्रीका सहित उन क्षेत्रों में दिए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जहां मलेरिया फैलाव का जोखिम ज्यादा है। मलेरिया से बचाने वाली इस वैक्सीन का नाम है RTS,S और ये वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घाना, कीनिया और मलावी में शुरू किए गए एक पायलट कार्यक्रम पर आधारित है। मलेरिया विषाणु ज्यादातर संक्रामक मच्छरों से फैलता है और मच्छर द्वारा काट लेने के बाद रक्त में प्रवाहित हो जाता है। अगर मलेरिया बीमारी का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह घातक साबित हो सकती है। मलेरिया से दुनिया भर में हर साल 4,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वर्ष 2000 के बाद से मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में लगभग आधी कमी आई है और ये बीमारी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में खत्म की जा चुकी है। इसके बावजूद अब भी हर साल 20 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
और इसी के साथ हम लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
चीज की कमी नहीं, प्रभु
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 15 अक्टूबर को कलीसिया की आचार्य येसु की संत तेरेजा तथा ग्रामीण महिलाओं को समर्पित विश्व दिवस पर दो अलग अलग ट्वीट संदेश प्रकाशित किए। कलीसिया की आचार्य येसु की संत तेरेजा के पर्व दिवस पर जारी अपने ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, येसु की संत तेरेजा हमें सिखाती हैं कि प्रार्थना असाधारण चीजों का अनुभव करना नहीं है, बल्कि प्रार्थना येसु ख्रीस्त के साथ जुड़ना है और इस मिलन का संकेत हमें उदारता के कार्यों में मिलता है। 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ग्रामीण महिलाओं को समर्पित विश्व दिवस पर प्रकाशित ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, ग्रामीण महिलाओं के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे प्रयास और बलिदान हमें ऐसे नेटवर्क बनाने की अनुमति देते हैं जो भोजन तक पहुंच को सुनिश्चित करते हैं तथा संसाधनों का समान वितरण संभव बनाते हैं। साथ ही इस संभावना को भी मूर्त रूप देते हैं कि हर इंसान अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में वेटिकन न्यूज को दी एक भेंट वार्ता में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रवक्ता मार्टिन पेनर ने विश्व खाद्य असुरक्षा तथा कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव के कारण पहले से ही पीड़ित देशों की कठोर वास्तविकता पर प्रकाश डाला। संत पापा फ्रांसिस के संदेश का हवाला देते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रवक्ता मार्टिन पेनर ने कहा कि संत पापा ने भुखमरी को बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला अपराध कहा है, जिसे न तो अनदेखा किया जा सकता है और न ही जिसके प्रति उदासीन रहा जा सकता है। विश्व खाद्य दिवस की तैयारी के मद्देनजर श्री पेनर ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि वर्षों की गिरावट के बाद विश्व में भुखमरी की दर लगातार बढ़ रही है। उनके अनुसार फिलहाल विश्व में लगभग 81 करोड़ लोग क्षुधा पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप एक ग्राफ को देखते हैं तो 2017 तक संख्याएं बहुत स्पष्ट रूप से नीचे जाती हैं, किंतु इसके बाद वे धीरे धीरे ऊपर जाने लगती हैं। हालांकि हाल ही में वृद्धि काफी महत्वपूर्ण रही है। विश्व में व्याप्त भुखमरी पर सबसे हालिया रिपोर्ट जुलाई में जारी की गई थी और यह दर्शाती है कि 16 करोड़ 10 लाख अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी के कारण भुखमरी के शिकार हुए हैं। दुर्भाग्यवश भूख से सर्वाधिक पीड़ित देश हैं यमन, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, हेती, सोमालिया और कांगो। उन्होंने कहा कि ये वे स्थान हैं जो दुर्भाग्यवश कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति कोविड महामारी के कारण बद से बदतर हो गई है, जिसे श्री पेनर एक दुखद गुणक के रूप में वर्णित करते हैं। वे बताते हैं कि यह उन चुनौतियों के शीर्ष पर एक और परत है जिसका सामना निर्धन लोग पहले से ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस महामारी का उन परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा जो पहले से ही युद्ध, संघर्ष, राजनैतिक और आर्थिक उथल पुथल तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी निर्धन लोगों के लिए एक दुखद गुणक सिद्ध हुई है। श्री पेनर ने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में दुनिया में भुखमरी पैदा करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह संतोष का विषय है कि COP26 सम्मेलन के कारण लोगों में जलवायु संकट के विषय में जागरूकता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन COP26 के लिए नवंबर में विश्व के लगभग 200 नेता ग्लासगो में बैठक करेंगे, जहां देशों से यह बताने के लिए कहा जाएगा कि वे इससे निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं और किस तरह नई प्रतिबद्धताओं को रेखांकित कर रहे हैं। परम धर्म पीठ की ओर से भी एक प्रतिनिधिमंडल COP26 में उपस्थित होगा। इस संदर्भ में श्री पेनर ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस की आवाज निर्णायक है। उन्होंने कहा, विश्व के भूखे और कमजोर लोगों पर संत पापा जो ध्यान देते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, परम धर्म पीठ की उपस्थिति तथा संत पापा का संदेश यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ये मुद्दे विश्व नेताओं के एजेंडे पर मजबूती से बने रहें। रोम में गुरुवार को आधुनिक दास्ता से लड़ने के लिए एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाना शीर्षक से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर्स जनरल ने परम धर्म पीठ से संलग्न आयरी और अमरीकी राजदूतावासों के साथ मिलकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि आज विश्व में कम से कम 2 से लेकर 4 करोड़ तक लोग आधुनिक दास्ता जैसे मानव तस्करी के शिकार बने हुए हैं। संगोष्ठी में इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया कि मानव तस्करी एक ऐसा व्यापार भी है जिस पर रोक लगाना मुश्किल है, क्योंकि इससे तमाम विश्व में तस्कर और अपराधी जगत के लोग प्रतिवर्ष 150 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक मुनाफा कमाते हैं। ललिता कुम कैथलिक अंतर्राष्ट्रीय उदारता संगठन की समन्वयकर्ता सिस्टर गब्रियेला बोतानी ने कहा कि यह विषय उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही खास नई पीढ़ी उभर रही है जो काफी अनोखी है। उन्होंने कहा, जब हम इस जघन्य अपराध की दुनिया को खत्म करने के मिशन पर हमारे साथ काम करने के लिए नई पीढ़ी को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तब शायद हमें सशक्त बनाने के लिए हमें खुद उनकी आवश्यकता है। सिस्टर बोतानी ने कहा, युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है। मुझे लगता है कि वे हमारे ग्रह को साफ करने की आवश्यकता से अवगत हैं। हमारी सभी व्यवस्थाओं को साफ करने की आवश्यकता के प्रति वे जागरूक हैं, ताकि वे स्वयं अपने परिवारों के लिए एक खुशहाल और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गईं 3 ईसाई महिलाओं को एक स्थानीय अदालत ने 13 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया। उका समाचार से हुई बातचीत में 14 अक्टूबर को प्रोटेस्टेंट ख्रिस्तीय संप्रदाय के पादरी दीनानाथ जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुई घटना में गिरफ्तार एक पादरी सहित 4 अन्य की जमानत याचिकाओं पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है। हिंदू कट्टरपंथियों ने रविवार को एक प्रार्थना समारोह में शामिल लगभग 50 ईसाइयों पर हमला कर दिया था। उक्त 7 व्यक्ति इन्हीं ईसाइयों में से थे। पादरी जायसवाल ने कहा, महिलाएं इतनी आहत हैं कि वे अपनी पीड़ा को समझाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में उनकी प्रार्थना सभाओं पर बार बार हमलों के बाद राज्य में ईसाई जबरदस्त दबाव और भय में जी रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।